नमस्कार, हम सब अक्सर ये सोचते हैं, मैं कौन हूँ? सवाल बहुत सरल लगता है, पर है उतना ही गहरा। आज हम पूज्य गुरुदेव युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी की पुस्तक है मैं क्या हूँ, उसके चौथे अध्याय के जरिए इसी गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करेंगे।
जी, इस अध्याय का जो मूल उद्देश्य है वो है हमारे इस सीमित मैं मतलब आत्मा और उस अनंत परमात्मा के बीच का जो रिश्ता है उसे समझना। तो चलिए इस खोज में उतरते हैं।
बिल्कुल, और अध्याय की शुरुआत ही देखिए, उपनिषद के एक बहुत ही सशक्त विचार से होती है, ईशावास्यमिदं सर्वं यत् किंचित् जगत्याम जगत, जिसका मतलब है कि संसार में जो कुछ भी है, जो भी गतिशील है, वो सब ईश्वर से ही व्याप्त है, उसी की चेतना सब में है। तो ये अध्याय हमें दिखाता है कि कैसे हम अपनी इस छोटी सी व्यक्तिगत चेतना को उस विराट, उस सार्वभौमिक चेतना से जोड़ सकते हैं। पूज्य गुरुदेव समझाते हैं कि हमारी आत्मा, जिसे हम आमतौर पर अपना मैं मान लेते हैं, वो असल में उस विराट परमात्मा का ही एक अंश है। जैसे उन्होंने उदाहरण भी दिया है, जैसे गर्भ में बच्चा माँ से ही पोषण लेता है ना?
हाँ बिल्कुल,
वैसे ही हम सब उस परम चेतना से जुड़े हुए हैं। तो फिर सवाल ये उठता है कि अपनी इस छोटी सी मैं वाली भावना को उस ब्रह्मांडीय विस्तार तक कैसे ले जाएं? इसका रास्ता क्या है?
हाँ, और यहाँ एक बहुत ही रोचक बात पूज्य गुरुदेव बताते हैं। वो कहते हैं कि हमारे अस्तित्व के दोनों ही स्तर, मतलब भौतिक शरीर और मानसिक जगत, इन दोनों में ही एक निरंतर प्रवाह है, एक बदलाव हमेशा जारी है।
अच्छा,
जैसे हमारे शरीर की कोशिकाएं हैं, हर पल बदल रही हैं, पुरानी मर रही हैं, नई बन रही हैं।
हाँ।
कुछ ही वक्त में हमारा पूरा शरीर, मतलब आणविक स्तर पर देखें तो पूरी तरह नया हो जाता है, पुराने का एक कण भी नहीं बचता।
अरे, ये तो सोचने वाली बात है। और ये शारीरिक बदलाव शायद हम उतना महसूस भी नहीं करते रोजमर्रा में।
नहीं करते।
पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ये सिर्फ शरीर की बात नहीं है, ये तो पूरी प्रकृति का नियम है। सब कुछ बह रहा है, बदल रहा है।
जी।
जैसे उन्होंने नदी का उदाहरण दिया कि कछुए के ऊपर से पानी बहता रहता है।
जी।
लगातार।
जी।
इसी बदलाव को समझकर ही तो फकीर गाते हैं, ये दुनिया आनी जानी है। पर अगर शरीर और बाकी सब कुछ बदल रहा है, तो फिर ये मैं, ये कहाँ टिका है, ये क्या है फिर?
हाँ, और यही सिद्धांत हमारे मन पर, हमारे विचारों पर भी लागू होता है। पूज्य गुरुदेव के अनुसार विचार भी जैसे आकाश में बादल तैरते हैं ना, वैसे ही इस विश्व आकाश में तैरते रहते हैं, एक मन से दूसरे मन तक पहुंचते हैं।
अच्छा,
हमारे जो विश्वास हैं, हमारी भावनाएं, हमारे जो निश्चय हैं, वो भी बदलते रहते हैं, क्योंकि पुराने मानसिक परमाणु जाते हैं, नए आ जाते हैं। अध्याय साफ करता है कि आत्मा को छोड़कर हमारे सारे शारीरिक और मानसिक परमाणु सब गतिशील हैं, सब बदलते रहते हैं। ये सब उसी एक महाचेतना के समुद्र की लहरें हैं बस।
और यहीं से मुझे लगता है बात और गहरी होती जाती है। अगर सब कुछ ही, मतलब हमारा शरीर, हमारे विचार, सब एक सतत प्रवाह है, एक बहाव है, तो फिर इसमें स्थायी रूप से मेरा क्या हुआ?
सही।
पूज्य गुरुदेव ने नदी की धारा का बहुत सुंदर उदाहरण दिया है कि क्या कोई कह सकता है कि पानी की कौन सी बूंदें उसकी अपनी है?
वो तो बस छूकर आगे निकल जाती है ना, है ना?
बिल्कुल,
पलक झपकते ही तो या तो पूरी धारा ही आपकी है, या फिर सच पूछिए तो कुछ भी नहीं।
हाँ।
और इसी बोध से, इसी समझ से फिर एकता का अनुभव जागता है। पूज्य गुरुदेव इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि प्रकृति, जिसे हम जड़ समझ लेते हैं, वो मृत नहीं है, वो जीवित है। उसके परमाणु भी शक्ति से भरे हैं, सक्रिय हैं। हम सब उसी एक जीवन समुद्र के हिस्से हैं। जैसे कहा भी है, एक ही तालाब की हम सब मछलियां हैं। तो हमें अपनेपन की जो सीमा है, उसे इस शरीर से निकालकर पूरे विश्व तक फैलाना है।
जैसे गीता में भी कहा गया है कि योगी आत्मा को सभी प्राणियों में और सभी प्राणियों को आत्मा में देखता है, सब में एक ही संभाव रखता है।
हाँ बिल्कुल, इसी बोध से व्यक्ति स्थित प्रज्ञ बनता है, मतलब जो सुख दुख लाभ हानि इन सब में सम रहता है, विचलित नहीं होता है।
तो इस एकता को सिर्फ मतलब दिमागी तौर पे नहीं, बल्कि अनुभव करने के लिए पूज्य गुरुदेव ध्यान और चिंतन का अभ्यास बताते हैं। पहले स्थूल पदार्थों की एकता पर ध्यान लगाना, महसूस करना कि सब कुछ उसी एक चेतना शक्ति की तरंगे हैं।
जी।
फिर सूक्ष्म मानसिक जगत की एकता पर चिंतन करना,
और ये समझना कि हमारा मन भी उस विराट महामन की एक बूंद जैसा ही है। हमारे विचार, हमारा ज्ञान, वो सब भी उसी एक सार्वभौम ज्ञान सागर की बूंदें हैं, जो हम अलग अलग तरीकों से लेते रहते हैं। जब ये भावना पक्की हो जाती है, कि सब मेरा है या फिर ये कि मेरा कुछ भी नहीं, तब व्यक्ति सही मायने में स्थित प्रज्ञ बनता है। वो देखता है कि सभी आत्माओं का जो मूल तत्व है वो एक ही है, जैसे अलग अलग घड़ों में आकाश तो एक ही रहता है ना।
हाँ बिल्कुल।
तब पूज्य गुरुदेव उस परम सत्य को बताते हैं कि आत्मा असल में परमात्मा का ही अविनाशी अंश है
और अपने विशुद्ध अपने मूल रूप में वो परमात्मा ही है।
जी।
और इसी अनुभव में पहुंचकर जीव कहता है सोहम अस्मि, वो परमात्मा मैं हूँ।
हाँ, लेकिन पूज्य गुरुदेव यहाँ एक चेतावनी भी देते हैं। वो कहते हैं कि ये जो सच्चा ज्ञान है ये केवल कल्पना या किताबी बात नहीं होनी चाहिए।
अच्छा।
इसे जीवन के व्यवहार में उतरना चाहिए, प्रेम के रूप में, दया, करुणा, सच्ची सहानुभूति के रूप में। असल में सच्ची सहानुभूति ही सच्चा आत्मज्ञान है।
ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। तो संक्षेप में अगर कहें तो पूज्य गुरुदेव की पुस्तक मैं क्या हूँ का ये चौथा अध्याय हमें अपनी इस छोटी सीमित पहचान, इस मैं से ऊपर उठकर अपनी जो असली ब्रह्मांडीय पहचान है सो हम, उसे अनुभव करने का रास्ता दिखाता है।
जी।
और ये रास्ता इस समझ से होकर गुजरता है कि सब कुछ एक ही चेतना का निरंतर प्रवाह है और हम सभी उस एक परमात्मा के ही अभिन्न अंग हैं।
बिल्कुल सही कहा। और अंत में एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं जो पूज्य गुरुदेव के लेखन की गहराई से ही उठता है कि यदि हम सब इस निरंतर प्रवाह और इस सार्वभौमिक एकता के सत्य को सचमुच अपने जीवन में उतार लें, गहराई से आत्मसात कर लें, तो हमारे आपसी रिश्ते कैसे होंगे? हमारे लगाव, हमारी रोजमर्रा की चिंताएं, हमारे भय, इनका स्वरूप कैसा हो जाएगा?
सोचने वाली बात है।
अध्याय का एक सूत्र इसे बहुत सुंदरता से कहता है, अविनाशी आत्मा परमात्मा का अंश है और अपने विशुद्ध रूप में वह परमात्मा ही है।